तो आज के साइलेंट विजडम के सत्संग में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न जो आया है, किसी भी कारण के ना होते हुए कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मन उदास होता है, परेशान होता है और उससे थोड़ा डर लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात है ही नहीं। जैसे इन्होंने लिखा है कि सम डेज आर ग्लूमी एंड सैड, तो ये प्रकृति का नियम है। सब दिन कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा रहे। ये बिल्कुल प्रकृति में भी, जैसे हवा चलती है, हवा बहुत बह रही है, कई बार ठंडी होती है, कई बार गर्म होती है, कई बार बिल्कुल हवा नहीं होती, प्रकृति है ना। ऐसे ही कभी सूरज की रोशनी कभी तेज़ होती है, कम होती है, सूरज ढल रहा है, बढ़ रहा है, उग रहा है। ऐसे ही जो हमारा मन है ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ की दिक्कत है, ये सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ दिन आपका मन परेशान हो जाता है बिना किसी कारण से, कोई कारण नहीं होता। अब क्योंकि कारण नहीं है तो उसमें कारण ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं ये सोच के कि मैं क्यों परेशान हूँ। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। हमारे शरीर को देखिए, कोई कोई दिन ऐसा होता है हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, और कोई दिन ऐसा होता है कि हमें लगता है अरे आज तो बिल्कुल ही बहुत डल फीलिंग हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बिना किसी कारणवश सर दर्द होने लग जाता है, पेट दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे ही हमारा मन भी कभी बिना किसी कारण खुश भी हो जाता है और कभी बिना किसी कारण परेशान भी हो जाता है। हमें क्या करना है एज अ साधक, बस ये जानना है कि ऐसा है, ये मन ऐसा कर रहा है, कुछ परेशानी की बात नहीं है। जब थोड़े दुखी है मन तो कोई बात नहीं, दुखी रहने दो, उसको और कोशिश मत करो कि हाय मैं कैसे इसको ठीक कर दूँ, अगर वो अपने आप ही ठीक भी हो जाएगा। अगर आपके पास कोई चीज़ हो, आप अपने मन को वहाँ लगा सकते हो तो लगा लो, और अगर वो परेशान है तो इसमें और परेशान मत हो कि हाय मैं परेशान क्यों हूँ। दूसरा सवाल, ये इस बार के गीता सेशन में भी हमने बात की थी इस बारे में कि जो गुरु को हम देते हैं वो भी क्यों दिया जाता है, क्यों गुरु की सेवा करनी है। और फिर हमने ये भी डिस्कशन किया था कि कैसे अगर आप सिर्फ देते हो और जिसको दे रहे हो उसको देने का मौका नहीं देते तो वो भी सही नहीं होता। देखो ये जो पूरा देन लेन का सिस्टम है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, ये हम सब लोग जानते हैं। कभी क्या होता है कि हम किसी को बहुत देते हैं और अगर हमें, हमारे मन में जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो मीट हो जाती है कि हाँ मैंने उस पर्सन के लिए इतना किया उसके लिए और उसने भी मेरा कर दिया या मुझे मिल गया या एक्नॉलेज कर लिया या मुझे अप्रिशिएट ही कर लिया, तो हम, हमारा जो मन है उसमें ठीक हो जाता है कि हाँ ऐसा है। तभी हमारे यहाँ जो सिस्टम भी बनाया गया है वो यही बनाया गया है कि अगर आपको कोई देता है तो आप भी वापस दे दीजिए। ये जो देन लेन का है ना, इसको बराबर का रखिए, बोलते भी है ना देन लेन भी बराबरी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मन की आदत है। और ऐसे ही अगर कोई हमारा ज़्यादा कर देता है, जो हमें लगता है किसी ने बहुत कर दिया और हम उसका नहीं दे पा रहे हैं, तो भी वो परेशानी का कारण बनता है। तो हमें दोनों ही, ये मैं एक साधारण मनुष्य के साधारण मन की बात कर रही हूँ जो दोनों चीज़ों से परेशान होता है। अगर वो किसी को ज़्यादा दे देता है, उसको लगता है मैंने बहुत किया, दूसरे ने मेरा नहीं किया, उससे भी परेशान होता है। और अगर उसको लगता है कि दूसरे ने मेरा बहुत कर दिया और मैं उसका नहीं कर पाया, वो उसको लेकर भी परेशान होता है। दोनों ही केसेस में वो परेशान होता है। तो ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि साधक हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा हम समझ सकते हैं। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जब मैं किसी को देती हूँ, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि मैं बहुत देती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक जाती हूँ, आई गेट एग्जॉस्टेड, और मैं डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ कि मैं इतना दिए जा रही हूँ और दूसरा जो लेने वाला है वो समझ ही नहीं रहा है, और फिर लेकिन मैं फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। ये इनका सवाल था कि मैं नहीं रोक सकती अपने आप को देने से, लेकिन मुझे बुरा भी लगता है देने के बाद। तो ये तो गड़बड़ ही है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, यहाँ पे सोचना है कि जब मैं किसी को दे रही हूँ तो क्यों दे रही हूँ, मेरा कारण क्या है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बार, और ये हम खुद ही अपना जान सकते हैं, हम किसी को देते भी इसलिए हैं कि हम अच्छा फील करें अपने बारे में, हमें अच्छा लगता है। ये सबको अच्छा लगता ही है देना, और वही अगर मेरा कारण है कि मुझे अच्छा लग रहा है देने में, तो देखा जाए तो वहाँ पर लेना तो हो ही गया ना। मुझे अच्छा लगा अगर मैंने दिया तो वो अपने आप में मुझे देखा जाए तो रिवॉर्ड मिल गया वहीं की वहीं। अभी मुझे और कुछ क्यों चाहिए। लेकिन ये साधक समझ सकता है शायद, एक आम मनुष्य के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि मेरी नीड की। फिर ये होता है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो फिर मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मुझे अपने आप को क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि मैं उस जिसको दे रही हूँ उससे मैं वापस में क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। चलो कई बार ये होता है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि दूसरा भी आपकी मदद करे या दूसरा भी आपको उतना ही दे, लेकिन शायद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे वो एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करे कि उसको मिला, उस चीज़ को अप्रिशिएट तो करे। या फिर कई बार ये हो जाता है कि कम से कम लेने के बाद चलो वो और कुछ भी ना करे, मेरी बुराई तो न मत करे, उसको भी गलत तरीके से, एक तो मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ और फिर भी वो मेरे ही बारे में कुछ गलत कर रहा है। ये सब तरह की चीज़ें आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी फेस की हैं। कई बार हम किसी की मदद करने के लिए कुछ करते हैं जिसको वो गलत ढंग से ही ले लेते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये लेन देन वाला जो किस्सा होता है ना, किसी भी सेंस में ये बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए देने वाले के हाथ में, जो आप दे रहे हो। आप क्यों दे रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे देने के लिए, और तीसरी चीज़ आप किसको दे रहे हो, पात्र कौन है। देखो सही पात्र होना बहुत ज़रूरी है आप जब भी किसी को देते हो। मैं ये नहीं बोलती आप हर समय जज कर सकते हो कि जो लेने वाला है वो पात्र सही है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब एक हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया, ठीक है, और अर्जुन कैसे सही पात्र बना। अर्जुन ने जब कृष्ण ने अपनी सेना बोला कि या तो आप तुम युद्ध के लिए मुझे चुन सकते हो या मेरी सेना को, तो अर्जुन ने कृष्ण को चुना। वो जो अर्जुन ने कृष्ण को चुना सेना के ऊपर, और आप सबको पता है कि दुर्योधन तो मन में सोच ही रहा था कि इन्होंने पहले अर्जुन को बोल दिया कहीं ये सेना ना ले ले। अगर दुर्योधन को भी पहले उन्होंने ऑप्शन दिया होता तो वो सेना चुनता, वो भगवान को नहीं चुनता। तो उस दिन अर्जुन सही पात्र हो गया उसको लेने का, और इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का ज्ञान दिया। और आप देखो अर्जुन ने कितना समय लगाया, मतलब श्री कृष्ण को 700 श्लोक लगे, 700 श्लोक लगे हैं अर्जुन को समझाने के लिए, लेकिन वो थके नहीं, वो एग्जॉस्ट नहीं हुए। यहाँ पे जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ किसी की हेल्प करते करते, कृष्ण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो सामने लेने वाला है वो सही सुपात्र है, और अगर मुझे इतना समय भी लगेगा उसके साथ तो भी कोई बात नहीं। पर आप सोच सकते हो कि यही अगर वो दुर्योधन को दे रहे होते ज्ञान, वैसे श्री कृष्ण कभी दुर्योधन को ज्ञान देते नहीं, मैं एक जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ कि जो पात्र नहीं है अगर आप उसको दोगे, चाहे वो देने वाला कोई भी हो, वो परेशान ही होगा। तो जो भी हम देते हैं, चाहे हम किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, चाहे हम किसी को अपना समय देते हैं, चाहे हम उसको ज्ञान देते हैं, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम दे रहे हैं, हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि वो सुपात्र है कि नहीं है। और कभी कभी हम नहीं जान सकते, कभी गलती हो जाती है, हम इतने सक्षम नहीं हैं जानने में कि वो सुपात्र है कि नहीं है। तो देने से पहले ही एक क्लैरिटी अपने माइंड में रखो कि हो सकता है ये इसको ना समझे, हो सकता है ये इसका गलत ही इस्तेमाल करे, हो सकता है कुछ भी ना हो आगे, कोई बात नहीं। ये देते हुए मुझे अपने माइंड में ये क्लैरिटी रखनी है और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कब तक मुझे देना है और कब मुझे अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, अपनी बाउंड्रीज बनानी है। हम सबको ये बाउंड्रीज बनानी ज़रूर आनी चाहिए अपनी। अगर हम बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो ये मुश्किल होनी ही है। और मज़े की बात पता क्या है, जब मैं इनसे ये बात कर रही थी और मैंने उनको बोला कि आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी और आपको ये देखना होगा कि आपको कब हेल्प करनी है और कहाँ तक नहीं करनी, तो उन्होंने बोला लेकिन देने वाला तो भगवान ही होता है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ आगे देने से, अगर भगवान चाहते हैं कि मैं उसकी सहायता करूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर भगवान चाहते हैं आप उसकी सहायता करें तो करो, फिर एग्जॉस्ट क्यों हो रहे हो, फिर क्यों एग्जॉस्ट हो रहे हो। पर वो बात समझ में नहीं आई। हाँ, भगवान ही कर रहे हैं लेकिन आप क्या हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट हो ना, आप सिर्फ देने वाले इंस्ट्रूमेंट हो और हर इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस होती हैं, ये हमें जानना होगा। हमारी अपनी लिमिटेशंस है, हर किसी की लिमिटेशंस होती हैं। तो जो मैंने फिर से बोलूँगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो देने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कितना दे रहे हो और वापसी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये लेने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप, और दूसरे में हम साधक हैं, हम समझते हैं, हमें जहाँ पर भी लगता है कि हमें कोई कुछ देता है जो हमसे हो, देखो हमारी मनुष्यों की कंडीशनिंग ट्रेनिंग ऐसे ही हुई है कि कोई अगर देता है तो आप भी वापस दो, अगर हम जो हम कर सकते हैं हमारी मर्जी से सामने वाले को देख के उस हिसाब से हम कर दें। और एक्सपेक्टेशन कभी मत रखें दूसरे से कि कोई हमारा करे, अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे वो अपने आप में ही हमारी आधी प्रॉब्लम्स वहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम फैमिली ड्रामा और इमोशनल ड्रामा से, जो कि बहुत सालों से चल रहा हो, उससे बाहर आ सकते हैं? द आंसर इज येस, 100% आप बाहर आ सकते हो। और इस सवाल में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि इन्होंने जो ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही पकड़ा है कि वो ड्रामा ही तो है। देखो आपने खुद ही समझ लिया कि ये ड्रामा चल रहा है, फैमिली ड्रामा है और इमोशनल ड्रामा है। और जैसे आप किसी थिएटर में जाते हो, आप उस थिएटर में कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो और आपको नहीं अच्छी लग रही, तो आप उठ के आ सकते हो ना, बीच में से उठ के आ जाओ। लेकिन आपको लगे अरे नहीं, हमने इतनी महंगी टिकट खरीदी है, इतनी मुश्किल से टिकट मिली थी इस ड्रामे की, सब लोग बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है, कभी किसी प्ले में हम चले जाते हैं बड़ी महंगी टिकट खरीद के, फिर साथ में और भी लोग आए हुए हैं, उनको बुरा लगेगा, अब तो मुझे देखना पड़ेगा। अब ये सब नहीं चलेगा, है ना। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे बाहर आना है, तो आपका जो सवाल है कि क्या आया जा सकता है, बिल्कुल 100% आया जा सकता है। बस क्या होता है, देखो ये हम चूक कहाँ जाते हैं, हम क्यों नहीं आ पाते, इसलिए नहीं आ पाते कि कोई भी चीज़ जब हमें बदलनी होती है, आप भी उस ड्रामे में इन्वॉल्व हो, बहुत सालों से आपने बोला डेकेड से इन्वॉल्व हूँ, अब अगर आप उसको बदलोगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, देर इज़ अ प्राइस टू पे। और हमारी भूल कहाँ हो जाती है कि हम चाहते हैं चीज़ें तो बदल जाएं, ये ड्रामे से मैं बाहर आ जाऊं, ये सब समाप्त हो जाए, लेकिन उसकी जो प्राइस मुझे पे करनी है वो हम पे नहीं करना चाहते। एक आपको कहानी सुनाती हूँ, उससे फिर और चीज़ें क्लियर होगी। एक बार एक लड़का था जो जॉब कर रहा था अपना, और उसका जो ऑफिस है घर से कुछ 15-20 मिनट की दूरी पर ही था, तो चलकर जाता था और आता था, मतलब 15-20 मिनट की वॉक अच्छी थी। तो एक दिन रात को ऑफिस से जब वो घर लौट रहा था तो थोड़ा रात हो गई थी, ज़्यादा काम था, अंधेरा हो गया था, और उसके घर के पीछे ही एक थोड़ा एक स्ट्रेच था जो सुनसान था, कोई होता नहीं था। तो तो वहाँ से गुजर रहा था और पहले भी गुजरा था, ऐसा कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस रात को जब वो वहाँ से जा रहा था तो कुछ चार गुंडे लोग वहाँ पर आ गए। अंधेरा था, कोई नहीं था, और चार गुंडे, एक के हाथ में चाकू था, एक के हाथ में चेन थी, और एक कोई बड़ा सा एकदम बहुत ही, ये तो थोड़ा शरीर से थोड़ा ठीक ठाक था, वो थोड़ा लंबा चौड़ा था। और वो चारों ने इसको घेर लिया और बोला कि तुम्हारे पास जो भी है वो हमें पकड़ दे दो। अब इसके पास क्या क्या था, मोबाइल फ़ोन था, लैपटॉप था, पर्स था, पैसे थे। और उसको लगा कि नहीं, ये मेरे लैपटॉप में तो बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल इतना मैंने अभी लेटली ख़रीदा था, महंगा है, तो मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ। तो वो कोशिश करने लगा अपने आप को बचाने की, भागने की, लेकिन उन चारों ने इसको ज़ोर से पकड़ लिया और सब कुछ खींचा और इसको बहुत मारा, चाकू आके भी मारा, चेन से भी मारा, काफ़ी उसको ये भी कर दिया, मतलब घायल कर दिया काफ़ी अच्छी तरह, और सब सामान लेकर भाग गए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली किसी को पता पड़ा कि वो वहाँ पड़ा हुआ है, ये पहुँचा, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा, एक महीना हॉस्पिटल में रहा, एक महीने तक ऑफिस भी नहीं जा पाया। और बार बार उसके दिमाग में यही था कि अरे चार गुंडे आए, उन्होंने मुझे पीट दिया, उन्होंने मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम समझें, देखिए, उस दिन जब इन्होंने, चार गुंडों ने उसे पकड़ा, या तो ये इतना स्ट्रांग होता, हमारी हिंदी मूवी का हीरो होता है ना, कि चारों को पीट देता, तब तो उसे उनसे भागने की या लड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमें पता होना चाहिए कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमें ना अपने बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है, तब तो बात सही थी। लेकिन क्योंकि क्लियरली ये ऐसा नहीं था, बेटर नहीं होता कि ये उसी दिन उसी समय अपना सब सामान उठा के उनको दे देता। वो तो वैसे भी गया, वो जिसको बचाने की कोशिश कर रहा था वो सारा सामान तो वो ले ही गए, उसके अलावा उन्होंने उसे इतना और घायल कर दिया कि वो एक महीना हॉस्पिटल में रहा, जहाँ उसके बिल आए हॉस्पिटल के, इतनी परेशानी हुई, शारीरिक और मानसिक दर्द हुआ, प्लस एक महीना ऑफिस नहीं जा पाया, जो उसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम हुई। तो एक छोटा नुकसान बचाने के लिए उसने और बड़ा नुकसान कर लिया। अब ये कहानी सिर्फ इस लड़के की नहीं है, अब जब हम बात कर रहे हैं ना हमारे इमोशनल और फैमिली ड्रामास की, और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है जिन्होंने ये सवाल पूछा है, ये सवाल हम सबका है किसी ना किसी लेवल पे। तो हम भी क्या करते हैं, हम उन ड्रामास में इतने फंसे हुए होते हैं, और ये ड्रामे क्यों चलते हैं, यहाँ पर भी लेन देन की ही बात होती है। हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है उन फैमिली मेम्बर्स से, वो हमारी किसी ना किसी तरह की पूर्ति कर रहे होते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या होता है कि हमने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है जो हम चाहते हैं कि वो हमें कभी वापस करेंगे, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनसे हमें कुछ मिलेगा। अब देखो मेरी बात बहुत बुरी लगेगी अब मैं जो बोलने वाली हूँ, लेकिन ये ही सच्चाई है जो शायद हम संसार में नहीं समझ सकते। सारे रिश्ते जो होते हैं वो लेन देन पे टिके हैं, दे आर ओनली गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स। आप उसको हटा दीजिए, उस लेन देन को, आप देखो कितने रिश्ते बचेंगे। रिश्ते का मतलब ही ये है, रिलेशनशिप। आप औरों को छोड़ दो, अब सपोज़ अगर हम पेरेंट्स को, मैं थोड़ा एक्सट्रीम में लेके जा रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए, पेरेंट्स भी जब अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, माँ बोलेगी अरे मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है ना, तो अब तू मेरे साथ ऐसा करेगा, तुझे तो मेरा ध्यान रखना ही चाहिए। फादर बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने इतनी मेहनत की। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, नहीं बोल रही सबके यहाँ ऐसा होता है, लेकिन पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमने आप बच्चों के लिए कुछ किया है, बच्चों से ही हम आइडेंटिफाइड हैं, अब ये हमारे लिए करें। ऐसे ही जो भी ये ड्रामा, इन्होंने जो बात की फैमिली ड्रामास की, कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। और ज़्यादातर, मैक्सिमम लोग, मैं बोलूँगी कि जो भी रिश्ते बनाए हैं, आपसे जो भी रिश्ता है वो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन का ही रिश्ता है, या अगर आपने उनसे रिश्ता रखा है वो भी एक्सपेक्टेशन का है। अब देखो हम उसी कहानी से इसको समझ सकते हैं। वो जो चार गुंडे आए थे, क्या उनको उस लड़के में कोई इंटरेस्ट था? क्या उस लड़के में उन चार गुंडों को ज़रा सा भी इंटरेस्ट था? नहीं। किस चीज़ में इंटरेस्ट था? उनको इंटरेस्ट था उसके लैपटॉप में, उसके फ़ोन में, उसके पास जो भी सामान था, पैसे थे, घड़ी थी, उन चीज़ों में इंटरेस्ट था। अगर वो उनको वो छोड़ दे, वो दे दे, तो वो सेफ है, वो सेफ हो गया। ऐसे ही हम जब भी किन्हीं फैमिली ड्रामास में फंसते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई हमारे लिए क्या करेगा या हमें किसी से क्या मिल जाएगा। और जितना अगर हम उनको पहले ही छोड़ दें, जैसे जैसे ये लड़का अगर पहले ही दे देता, अगर आप बोल दो मुझे ये चाहिए ही नहीं, आप अगर फैमिली ड्रामा से बाहर निकलना चाहते हो ना, आप ये देखो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दूसरों से, आपको क्या लगता है आपको क्या मिल जाएगा। और अगर आप उस क्या मिलेगा मुझे इनसे, अगर आप इस चीज़ को छोड़ दो, आप आज ही फ्री हो जाओगे। आप ये सोच के देख लेना। और मुझे ये भी पता है कि उसके बाद एक जो ज़्यादातर लोगों का एक सवाल आता है, वो आता है नहीं मैं तो छोड़ भी दूँ लेकिन हस्बैंड है, लेकिन वाइफ है, लेकिन पेरेंट्स हैं। फिर हम वापस उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि हमारी फैमिली के और लोग हैं जिसकी वजह से हम ये नहीं छोड़ सकते। और मैं समझ सकती हूँ, हाँ ये होता भी है। और अगर फिर हम नहीं छोड़ सकते, फिर हमें एक्सेप्ट करना है कि ये ड्रामा चलेगा। पर आपका सवाल क्योंकि ये है कि क्या हम इससे छूट सकते हैं, बिल्कुल छूट सकते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जो काफ़ी फैमिलीज़ में होता है। प्रॉपर्टी और पैसे के इश्यूज ऑलमोस्ट हर परिवार में होते ही हैं, भाइयों में ले लो, औरों में ले लो, कुछ भी जो है फैमिली उसमें। फिर क्या होता है, सपोज़ किसी ने कुछ आपका जो है, लेट्स से किसी दादाजी की प्रॉपर्टी थी या फादर की प्रॉपर्टी थी जिनकी डेथ हो गई, या किसी ने विल नहीं बनाई, तो फिर क्या हो रहा है, उस पर झगड़े हो रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, आप जा रहे हो कोर्ट में, लड़ रहे हो, है ना। अभी लेटेस्ट से, अब मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ कि दो भाई हैं जो लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए कि इसको मिलेगी कि उसको मिलेगी। अब आप 20 साल, और ऐसे किस्से होते हैं आराम से, 5 साल, 10 साल, 20 साल आप उसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगी, या तो आप जीत जाओगे केस या आप हार जाओगे, ठीक है। अब लेटेस्ट से आप केस हार गए। अगर आप केस हार गए, क्या आप देख सकते हो कि आपने जिस दिन वो केस करा, वो केस करने से 5 साल तक जो है आपको वैसे इतनी परेशानी रही, आपके पैसे भी और लगे, आपने वकील को इतने पैसे दिए, आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, आपको और दिक्कतें आई, उसके बाद आप केस भी हार गए। अगर आपने 5 साल पहले ही छोड़ दिया होता उस प्रॉपर्टी को, जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये लड़का अगर अपना सामान छोड़ देता, आप बोलते अरे जाने दो, नहीं चाहिए हमें, ले लो तुम, हमें नहीं चाहिए। हाँ आपकी प्रॉपर्टी गई, मे बी करोड़ों की प्रॉपर्टी गई, लेकिन वो जो 5 साल आप चैन से रहते, मे बी शुरू में थोड़ी परेशानी होती, शॉर्ट टर्म में परेशानी होती कि हाँ हमसे ये इतना छूट गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में या आपको जो सुकून रहता वो कितना ज़्यादा होता। और हम इन दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते। अब हम एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये भी बोल देते हैं कि चलो ठीक है, आप केस जीत भी गए, आप लड़े और आप केस जीत गए, तो आप बोल रहे हो देखो चलो 5 साल केस चला लेकिन मैं जीत तो गया, चलो जीत के आपको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी मिल गई। पर आपने जो 5 साल जो आप स्ट्रेस में इतना गए, इतनी परेशानी की, क्या वो वर्थ था इस 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए? ये मैं ये नहीं बोल रही कि वर्थ है या नहीं है, ये हर किसी को अपनी कॉल लेनी है, हर किसी की कॉल डिफरेंट होगी। हाँ किसी को ये लगेगा कि हाँ लड़ना ज़रूरी है, तो ठीक है। और अगर हमें लड़ना है तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि अब मुझे शांति मिले, नहीं, फिर शांति मत एक्सपेक्ट करो, फिर पीस मत एक्सपेक्ट करो, और फिर ड्रामे से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, फिर आपको ड्रामे में रहना पड़ेगा। अगर ड्रामे से बाहर निकलना है इस फैमिली ड्रामा से, फिर आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। दोनों में प्राइस है, देखो कुछ भी दोनों सस्ती चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए या सामान चाहिए या जो भी चाहिए, तो आपको वो जो लड़ना है आपको, वो आपकी प्राइस है। आपको पीस जो आप दे रहे हो वो आपकी प्राइस है, आपकी शांति जो भंग हो रही है वो आपकी प्राइस है जो आप पे कर रहे हो। और अगर आपको वो शांति चाहिए तो ये प्रॉपर्टी को आप फोरगो कर रहे हो, ये आपकी प्राइस है। तो ये आपको चूज करना है, आपको क्या लेना है। और हमारे ही संगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिन्होंने छोड़ दिया है। ये मैंने बोला ना, हर फैमिली में कहीं ना कहीं ये आती ही है प्रॉब्लम। उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमें कुछ मत दो, हम आज ही छोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं और बहुत सुखी हैं। इसका छोड़ो, डिवोर्स होता है और फिर से हमारे यहाँ केसेस हैं। देखो डिवोर्स भी क्या होता है, डिवोर्स बहुत लंबा क्यों खिंचता है अगर किसी का होता है, एलिमनी के चक्कर में। और हमारे ही उसमें ऐसे लोग हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए, और जबकि करोड़ों की एलिमनी मिल सकती थी, उन्होंने बोला नहीं, मुझे क्विक डिवोर्स चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये ड्रामा चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितने कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, उसके बाद जो वकील हैं कुछ ना कुछ लांछन लगाएंगे, ये वो सब बातें होंगी, हमें नहीं चाहिए, उससे बेटर है कि मैं वो ही छोड़ दूँ। तो अगर आप पहले ही छोड़ देते हो चीज़ों को तो आप फ्री हो गए, और अगर आप नहीं छोड़ते हो तो फिर ड्रामा चलेगा, और है ड्रामा ही, कोई बात नहीं। अगर आप चूज़ करते हो, देखो यहाँ पे जजमेंट होने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सही है वो गलत है, फिर से मैं रिपीट करूँगी, ये आपकी चॉइस है। आपको लगता है नहीं हम ये नहीं छोड़ सकते, तो फिर ड्रामा चलता रहेगा। इसकी एक और ना एक कहानी है, आपको पता है कि ये जो हंटर्स होते हैं ये बंदरों को कैसे पकड़ते हैं जंगल में, तो ये क्या करते हैं, एक रस्सी के ऊपर एक वो छोटी छोटी मटकियाँ टांग देते हैं और मटकी में डाल देते हैं चने। तो क्या होता है, जब बंदर पेड़ पे चढ़ता है और वो देखता है मटकी में चने हैं, तो वो अपना हाथ अंदर डालता है चने लेने के लिए। और जब वो चने लेके क्या होता है, मुट्ठी बनानी पड़ेगी, है ना, मुट्ठी हो जाती है ना, तो क्योंकि आप चनों को बाहर निकालोगे, तो जब मुट्ठी डालता है तो हाथ बाहर नहीं आता, वो मुट्ठी अटक जाती है अंदर। अब वो चने छोड़ नहीं सकता और मुट्ठी जो है वो बाहर नहीं आ रही चनों को लेके। इतनी देर में जो हंटर है, वो शिकारी जो है, वो आके इनको पकड़ लेता है। ये किया जाता है बंदर को पकड़ने का। अब सोचो, जब बंदर ने रियलाइज़ किया कि मैंने, मेरी मुट्ठी बाहर नहीं आ रही, तो उसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ना, समझदारी क्या है, चने तो वैसे भी छूटने वाले हैं, एक बार शिकारी ने तुमको पकड़ लिया तो तुम्हारे चने तो वैसे ही जाने वाले हैं। लेकिन वो चने नहीं छोड़ सकता, और क्योंकि चने नहीं छोड़ रहा इसलिए वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। बिल्कुल यही हम सबके साथ भी होता है, क्योंकि हम छोड़ नहीं पाते, वी आर नॉट एबल टू लेट गो, वो प्राइस नहीं हम पे करना चाहते, और अगर हम वो प्राइस नहीं पे करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम रेडी हैं उस प्राइस को पे करने से, और सच में अगर आप एक बार, देखो आपकी चॉइस है कि अगर आप वो प्राइस पहले ही पे कर दो तो आप फ्री हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में हाँ थोड़े दिन परेशानी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे आराम ही मिलता है। वैसे भी एक दिन सब छूटने ही वाला है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, थोड़े दिन की माया है, है ना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, चौथा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये पढ़ के। आई कैन सी नाउ दैट आई एम वेरी जजमेंटल, आई जज एवरी वन आई कम अक्रॉस और स्पेंड एनफ टाइम, हाउ टू स्टॉप दिस। अगर आपने इस बार का गीता सेशन सुना था तो आई एम श्योर यहाँ पे जिन जिनों ने भी सुना होगा वो इसका जवाब दे सकते हैं, जहाँ पे क्षमा वाली बात हुई थी ना, एक तो कि वो गुरु के पास आके शिष्य ने बोला था कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा मन कितना खराब है। तो पहली बात तो यही बहुत अच्छी है कि आप ये देख पा रहे हो कि आप दूसरों को जज करते हो, बहुत अच्छी बात है। ये देख पाना अपने आप में ही आपकी प्रगति का जो है संकेत है। अब देखो जजमेंटल को या जजमेंट को हम समझते हैं, ये जो जजमेंटल होना होता है ये हमारे लिए ज़रूरी भी है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हमें हर समय जज करना पड़ता है, हम जो खाना खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, हम कुछ सामान खरीदते हैं बाज़ार से, चाहे वो हमारा राशन हो, सब्जी हो, फल हो, हम देखते हैं ना कि सही है कि नहीं है, ख़राब तो नहीं है, हम चेक करते हैं कुछ भी खाते हुए जो भी हमारे शरीर में जा रहा है, हम कोई भी अपना घर का सामान। फिर हम दूसरे लोगों को भी, हमें जज करना ज़रूरी होता है फिर से हमारे सर्वाइवल के लिए कि ये जो लोग हैं क्या मैं इनसे अपनी दोस्ती बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, क्या ये मेरे लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, गलत तो नहीं प्रूव हो जाएंगे। तो अनटिल अ सर्टेन लेवल, एक हद तक हमारे लिए जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता है। इसीलिए हमारे मन में और बुद्धि में ये क्षमता हमें प्रकृति ने दी है जजमेंट करने की। तो जजमेंट होना, और कुछ तो हमारे जो कार्य होते हैं, हमारी जो जॉब्स होती हैं, जैसे जजेज ही होते हैं, है ना, उसमें तो काम ही होता है आपका जज करना कि आप सही तरीके से चीज़ों को जज कर पाओ। फिर हम आते हैं जो आपका सवाल है कि आप ये देख पा रहे हो कि आप लोगों को ऐसे जज कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना तो ये आपके सर्वाइवल की ज़रूरत है और ना ही ये आपकी जॉब है, आपको जज तो बनाया नहीं किया जैसे कोर्ट में जज होते हैं, है ना। तो दोनों चीज़ों में ही जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो मन है वो जज कर रहा है दूसरों को, आई एम श्योर यहाँ से वो आ रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए। और इसके साथ मैं आगे का सवाल भी लेती हूँ क्योंकि इनके जवाब मिलकर ही आएंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने अगले सवाल में पूछा है कि हाउ टू स्टॉप प्रूविंग माई पॉइंट टू अदर्स ऑल्दो आई नो इट नाउ दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिफेंड माई सेल्फ एंड प्रूव माई पॉइंट, है ना, कि मुझे क्या लगता है कि मैं ही सही हूँ और मुझे दूसरे को बताना है, ये दिखाना है कि मैं सही हूँ और ये जाता नहीं है, है ना। तो ये दोनों चीज़ों में कि मुझे समझ में आ गया है कि मुझे दूसरों को जज नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मेरा माइंड जज करे जा रहा है, मुझे पता है कि मुझे अपना पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो इच्छा जाती ही नहीं है कि मैं अपने आप को प्रूव ना करूं, तो ये कैसे होगा, जो इनका छठा सवाल है, हाउ मच टाइम विल इट टेक एंड इज़ इट पॉसिबल टू चेंज माई सेल्फ। ठीक है, देखो फिर से, पहली बात, आपने ये समझ लिया, आपका 50% काम हो गया, ये समझ जाना कि मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, मैं दूसरों को जज कर रही हूँ, मैं दूसरों को प्रूव करना चाहती हूँ अपना पॉइंट, ये 50%। लेकिन 50% काम अभी भी बचा है, है ना, और वो भी आपने रियलाइज़ कर लिया है कि ये जानने के बाद भी हो नहीं रहा है, और वो क्यों नहीं हो रहा है। और ये अगेन हम सबकी प्रॉब्लम है कि हम अगर पहचान भी गए कि हमारा पैटर्न है, ये मेरी आदत है कि मैं ऐसा सोचती हूँ या मैं ऐसा बार बार करती हूँ, लेकिन वो सोचने के बाद भी मैं उसको बदल नहीं पा रही हूँ, मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे रियलाइज़ होता है मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस समय रुका ही नहीं जाता, पता नहीं अपने आप ही ऐसे निकल आती है मुँह से बात, और बाद में फिर परेशानी होती है कि देखो पता था नहीं बोलना है, चुप रहना है, फिर से बोल दिया। ये क्यों हो रहा है? देखो ये बात दो लेवल्स की है, इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे साइंस है, पूरी प्योर साइंस है। मैंने जो समझा कि ये मेरा पैटर्न है, ये कहाँ पे हुआ? ये थिंकिंग ब्रेन में हुआ, ये मेरी सोच में हुआ। और जो मेरी सोच है वो कहाँ है? वो सूक्ष्म लेवल की है, वो माइंड लेवल की है। तो मेरे माइंड के लेवल पे मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा एक पैटर्न है और मुझे उस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है, ये पैटर्न मैं बदलना चाहती हूँ क्योंकि ये पैटर्न मुझे दुख दे रहा है। ये कहाँ हो गया? आपके माइंड में। लेकिन उस माइंड के साथ एक और जो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ जुड़ी हुई है वो क्या है? वो है आपका ब्रेन। माइंड और ब्रेन अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखो। माइंड क्या है? आपकी सोच। माइंड क्या है? सूक्ष्म। और ब्रेन क्या है? ब्रेन है वो इंस्ट्रूमेंट, वो यंत्र जिसके थ्रू माइंड काम करता है। अगर हमारे ब्रेन को सुन्न कर दिया जाए तो हम सोच नहीं पाएंगे। ऑल्दो ब्रेन नहीं सोच रहा है, लेकिन ब्रेन के होने से ही हमारा माइंड काम कर सकता है। और जो ब्रेन होता है, ये दोनों कनेक्टेड हैं, जो ब्रेन है और माइंड कनेक्टेड हैं। अब मेरे माइंड ने इतने सालों तक लोगों को जज किया है, मेरे माइंड ने इतने सालों तक अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो मेरा ब्रेन है उसका एक स्ट्रक्चर बन चुका है। ये बायोलॉजी है, यहाँ पे बायोलॉजी हमें समझनी होगी कि जो हमारा ब्रेन है उसके जो न्यूरॉन्स है, उसकी जो वायरिंग है, वो एक तरीके से हो गई है, है ना। हम जैसे बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी जो हैबिचुअल हो जाती हैं, वो कैसे हुई हैं, वो ब्रेन की वायरिंग की वजह से हुई हैं। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रेन की वायरिंग होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी वो आदत होगी। तो जो आप इतने सालों से करते आए हुए हो, उसका मतलब है कि आपकी ब्रेन की वायरिंग वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जस्ट बिकॉज आपको आज ये रियलाइज़ हो गया कि ये मेरी सोच गलत है और मुझे इसको बदलना है, वो तो बद मैंने उसे बोला कि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको अब जो आपको वायरिंग बदलनी है वो ओवरनाइट नहीं बदली जा सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल, उसके लिए समय लगेगा। देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले तो डॉक्टर डायग्नोज करेगा कि आपकी बीमारी क्या है, लेकिन जब डायग्नोज हो गई तो डायग्नोसिस क्या था, सिर्फ आधा ही काम हुआ है, वो बहुत ज़रूरी काम हुआ है लेकिन आधा काम हुआ है। अब क्या करना होगा, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सी बीमारी है, अगर हमें एक छोटा सा कोई वायरल या कुछ वो भी हो जाता है तो भी डॉक्टर एक हफ्ते का एंटीबायोटिक्स का कोर्स देता है ना कि एक हफ्ते आपको ये करना है, छोटी मोटी चीज़ में भी। अगर कुछ बड़ी चीज़ हुई हो, हार्ट प्रॉब्लम हुई हो, कैंसर का प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ और हो, फिर तो और लंबा समय लगता है उसको निकालने में। बिल्कुल ऐसा ही है, अब आपको उस वायरिंग को चेंज करना होगा। और जो आपका सवाल है कि कितना समय लगेगा, ये बहुत हद तक आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें बदल पाओगे। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको हेल्प करती है वो है साधना। मैं क्यों बार बार साधना पे फोकस करती हूँ, देखो जैसे हम जो क्रिया योग की साधना भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन की वायरिंग है या जो हमारा ब्रेन है वो किससे कनेक्टेड होता है, किन चीज़ों से, हमारी सांसों से, हमारे सेंसेशंस से, हमारे ब्रेन में हम क्या काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो जब हम साधना करते हैं, उस साधना में भी हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को रीवायर ही कर रहे हैं, इसको जो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं अलग लैंग्वेज में, तो हम ब्रेन की रीवायरिंग कर रहे हैं। तो आप जितनी साधना करोगे, साधना सबसे मतलब एक क्विकेस्ट सबसे छोटा तरीका है आपकी ब्रेन को रीवायर करने के लिए। फिर आपका संगत, जितना आप ऐसी संगत में होगे जहाँ पर लोग नॉन जजमेंटल हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे को जज नहीं कर रहे, वो नेचुरली आपके ब्रेन को बार बार वो सिग्नल्स मिलेंगे, वही चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखो हम ऐसे लोग हैं, हम इमिटेशन पे चलते हैं, हम जो जैसा देखते हैं ना हमारे आसपास के लोग करते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। हमारे लिए सबसे आसान होता है कि हमारे सामने कोई ऐसा रोल मॉडल हो या ऐसे लोग हो जिनको हम बस कॉपी कर सकें। जैसे हम देखते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों को कॉपी करते हैं, जो बड़े करते हैं वो वैसे ही करने लग जाते हैं, इमिटेट जो हम बोलते हैं उनको कर करके सीखते हैं। हम चाहे उम्र में बड़े हो गए हों लेकिन हम भी बच्चे ही हैं, हम भी कॉपी ही करते हैं दूसरों को। तो इसलिए हमारी संगत, मैं क्यों बार बार सत्संग की बात करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि अगर हमारी संगत ऐसी होगी, हम लोग सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देख कर भी सीखेंगे। तो आप अगर एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में होंगे, उस संगत के साथ होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये करना। और तीसरी चीज़ प्रैक्टिस, ऑब्वियसली। ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपने आज इस बात को समझा है और कल आप जो है एकदम नॉन जजमेंटल हो जाओगे, ये एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो। लेकिन धीरे धीरे आप हर रोज ये संकल्प बनाओ अपने मन में कि मैं जज नहीं करूँगी। और फिर जजमेंट आएगा, ऐसा नहीं है जजमेंट नहीं आएगा, जजमेंट आएगा, आ जाने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे ही दिख जाए कि मैंने जज कर लिया, छोड़ दो वहीं पे, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें करते करते ट्रांसफॉर्मेशन होने में यही समय लगेगा, और जितना समय लगेगा, कुछ समय तो लगेगा, आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि एकदम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही, जिस दिन आप एक दिन देख पाओगे कि अरे वो सिचुएशन निकल गई और मैंने जज नहीं किया, मतलब मेरे माइंड ने कुछ जजमेंट नहीं किया, वो बहुत अच्छा होगा, उसके बाद रास्ता और भी आसान होता जाएगा। और यही चीज़ आपके लिए अप्लाई होगी अपना पॉइंट प्रूव करने की जो इच्छा है, जो डिज़ायर है। अगर आपको सच में समझ में आ गई है बात कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे को दिखाने की कि ये मेरा पॉइंट है, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है, और सच में बताऊँ हम जब कोशिश भी करते हैं ना, हम अगर किसी को प्रूव कर भी दें, दूसरे का माइंड बदलता नहीं है, उसने जो सोचा हुआ है वो सोचा ही हुआ है। ये हमारी थोड़ी देर के लिए ईगो सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि अरे मैंने अपना पॉइंट था, मैंने प्रूव कर दिया। कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, सब अपने ही पॉइंट में इंटरेस्टेड होते हैं, कोई आपके पॉइंट में इंटरेस्टेड होता ही नहीं है कभी भी। अगर ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से, तो काफ़ी हद तक ये इच्छा भी समाप्त हो जाएगी कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है। और फिर आपको ये सब चीज़ें करते रहनी है, प्रैक्टिस करना है। हम सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस क्या है? वो हमारी वायरिंग ही है, वो हमारे ब्रेन की वायरिंग है और कुछ नहीं है। तो ब्रेन को, अब जो आपने सोच लिया है मैं जज नहीं करूँगी, मैं अपना पॉइंट प्रूव नहीं करूँगी, इस सिस्टम को, इस सोच को आपके ब्रेन को पकड़ने में समय लगेगा। और बस उतना जितना भी समय लगेगा, कोई बात नहीं, लग जाएगा। सबके लिए अलग अलग समय होता है, तो हम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि 6 महीने लगेंगे, कि 3 महीने लगेंगे, कि 2 साल लगेंगे, या 10 दिन में हो जाएगा, हम नहीं ऐसा बोल सकते, जितना भी समय लगेगा। और एग्जैक्टली यही चीज़ हर पैटर्न के लिए अप्लाई होती है। ये बहुत ही अच्छे सवाल थे। अगर हमारा भी कोई भी पैटर्न है जो हम बदलना चाहते हैं, तो ये ना सोचें कि अरे मैंने पहचान तो लिया मेरा ये पैटर्न है, फिर भी मैं ये रिपीट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अभी साइकोलॉजी में समझ में आ गया है, पर मेरी बायोलॉजी बदली नहीं है। जिस दिन बायोलॉजी भी बदल जाएगी, उस दिन वो पैटर्न भी बदल जाएगा। मधुरा का सवाल है, हाउ टू वर्क ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट? आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ डाउटिंग एंड जजिंग माई ओन सेल्फ। इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट माई सेल्फ। ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन मधुरा। कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब अगर हम बोलेंगे यहाँ पर सेल्फ आइडेंटिटी, है ना, कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी किससे है, मैं क्या हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छी हूँ कि मैं बुरी हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ कि मैं बोरिंग हूँ, मैं वीक हूँ, है ना, यही इस तरह के सवाल होते हैं। और ये तुम्हारा नहीं, ये सबका, सबके दिमाग में कभी ना कभी होता ही है। और इस एज में ये क्वेश्चन आना बहुत सबका बड़ा नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी अभी क्रिएट हो रही है। जो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, वो सेल्फ आइडेंटिटी है। और बड़े मज़े की बात ये है कि पहले हम इस उम्र में पूरा काम करते हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम उस आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगे होते हैं। और यहाँ पर अध्यात्म में हम बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं, जहाँ पर हम उस आइडेंटिटी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो पूरी की पूरी आइडेंटिटी को तोड़ दो, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, अभी आइडेंटिटी बनानी है। तो हाँ, ये डाउट्स वगैरह आने सब ज़रूरी हैं, आते ही हैं। अब हमको सोचना कैसे है? इस उम्र में जो सही चीज़ होती है वो ये होती है कि मैं अपने लिए कुछ जो गुण हैं, जो मैं आइडियली, जो मुझे लगता है कि मुझे कैसा होना चाहिए, जैसे कि अगर मुझे इंटेलिजेंट होना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट मत बनाना, 2-3 चीज़ें कि ये जो है मैं ऐसा होना चाहती हूँ, और उनको वैसा होने के लिए मुझे क्या क्या करना है, वो तुमको करना है। और जो डाउट्स आते हैं वो अपने आप ही जाएंगे। वो डाउट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमको क्लैरिटी नहीं है कि तुम कैसी हो अभी। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए तुम्हें अपने गुणों को बढ़ाना होगा, अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा। और वो कौन से स्किल्स एबिलिटीज़ क्या हैं जो तुम बढ़ाना चाहती हो वो तुम्हें ही डिसाइड करना है, और उसके लिए मेहनत भी करनी है, आलस बिल्कुल नहीं करना है। और वो ऐसी होनी चाहिए चीज़ें जिससे तुमको लगे कि हाँ ये तो मुझे करना ही है, इसके लिए तो मुझे एक्स्ट्रा भी काम करना पड़े या मुझे रातों को भी जागना पड़े, सुबह शाम मेरे दिमाग में ये हो कि हाँ ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं हर चीज़ करूँगी वैसा बनने के लिए। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जब आप साधना कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सब लोग साधक हैं, तो आपके लिए साधना सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप साधना कर ही रहे हो, वो तो आपकी लाइफ की सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए साधना। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे लिए इस समय जो भी गुण तुम अपने लिए डिसाइड करो कि मुझे ये गुण चाहिए, उसके लिए तुम दिन रात मेहनत करो और खूब अच्छे से उसके लिए काम करो, और ये बहुत अच्छी बात है, उस पर करो, तो फिर अपने आप जो हैं डाउट्स बाद में फिर कम होने लग जाते हैं। अपने आप को जज करना और ट्रस्ट ना करना, कोई बात नहीं, ये बड़ी चीज़ें हैं, इनको छोड़ दो, इनके बारे में सोचने का समय नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा उद्देश्य होगा, कोई ऐसा पर्पस होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो तुम इतना उसमें घुस जाओगी उसको डेवलप करने में, तो ये जो डाउट्स और जज करना, ये सवाल, इनके लिए टाइम ही नहीं बचेगा, और ऐसा ही होना चाहिए, है ना?
हाँ बुआ, मुझे ये चीज तो क्लियर है कि साधना में हम उल्टा ही करते हैं कि जो हमने अपना वो बनाया होता है आइडेंटिटी या कॉन्सेप्ट, मतलब उसको छोड़ के हम, मतलब वो क्या बोलिए, खुद को जान, मतलब असली में जो हम है उसको जानते हैं। हाँ वो मैं चीज को क्लियर है, बट वर्ल्डली लाइफ में सर्वाइवल के लिए वो चीज, उस चीज में प्रॉब्लम आती है।
वही तो मैंने बताया कि तुम्हारे लिए इस समय वो जो वर्ल्डली लाइफ में तुमको जो आइडेंटिटी बनानी है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो तुम्हारी एज है, और देखो आइडेंटिटी बनानी होगी तभी आइडेंटिटी तोड़ी जाती है, अगर कोई आइडेंटिटी होगी नहीं तो तोड़ोगे क्या, समझ रहे हो? तो तुम्हारे लिए अभी उस आइडेंटिटी को बनाना ही तुम्हारी साधना है, ठीक है? तो अब तुमको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी चीज़ अपने में डेवलप करनी है, और इसके लिए बहुत अच्छी बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छे लोगों से मिलो, बात करो, क्योंकि तभी तो हमारे अंदर इंस्पायर होंगे हम कि अरे मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये सीखना है। आजकल तो कितना कुछ अवेलेबल है, और आजकल तो अपने स्किल्स डेवलप करना, मेरे ख्याल से हम लोग एक ऐसी एज में रह रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि 30 साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र में थी या कुछ, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे। आजकल कितना कुछ आप सीख सकते हो घर बैठे बैठे, कितनी चीज़ें आप जान सकते हो जो उस समय तो पॉसिबल ही नहीं था। बस आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या डेवलप करना है बस, और फिर उसमें लग जाना है जी जान से। थैंक यू। यस दीक्षा, यू हैव अ क्वेश्चन।
या मुनिमा, सो लाइक व्हेन यू मेंशन दैट यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर नॉन जजमेंटल, or you know that they don't judge, but sometimes like in office or in work there are people around you jinke sath aapko project karna hai and there is no option available, karna hi hai, and you know that they are judgmental, you know they are back bitching about you or anybody for that matter, not just you but anyone it could be. So what happens is for me, my creativity goes down because of such people. I mean, if I have to work together with them, like ek project hai us pe mujhe bhi apna opinion dena hai, and they are very loud with their opinions. So in that case, how do I, you know, deal with it? Because that is something which is difficult for me right now.
Yeah, very valid question, Diksha, and I totally understand what you're saying. Because there are certain situations where you cannot avoid such people, okay? You cannot avoid being around judgmental people. So, and I'm not going to suggest to you, you know, here this is not, and of course, this is not the right thing that you leave the job just because people are judgmental, right?
Correct.
So, So that is where we have to learn to, we have no choice but to compromise. Okay. So either I become so strong. So there are two options. One is I can become so strong myself and I am so strong in also being non-judgmental about them that they would also feel so and they will change. You know what I'm saying? That because of me, I can be a very strong influence on them. And because I am non-judgmental towards them, they will also learn. That is one option. Second is, if I cannot do that and I know, as you said, my creativity gets compromised, then yes, you know, you just accept that for certain people, certain situations, this is going to get compromised and I cannot help it. बस ये ध्यान देना है कि वो इतना ज़्यादा हमारी लाइफ को ओवरपावर ना करे. ठीक है, किसी एरिया में आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा लेकिन बाकी एरियाज़ ठीक होने चाहिए. एटलीस्ट कुछ एरियाज़ मेरी लाइफ के ऐसे होने चाहिए जहाँ पे कम्प्लीटली मेरा कंट्रोल है, जहाँ पर मैं खुद अपने से अपने लेवल पे जो करना चाहती हूँ, मेरी जो कैपेबिलिटी है वो कर सकूँ. और तुम्हारी जॉब में ये कम्प्लीटली पॉसिबल है.
राइट, नो दिस इज वेरी टेम्पररी प्रोजेक्ट.
राइट राइट, यस.
नमस्ते दीदी.
नमस्ते जी.
दीदी, जब भी हमारी फैमिली में कोई जैसे लव्ड वन है हमारे बीमार होते हैं तो दीदी मन जैसे खराब बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन थॉट्स खराब हो जाते हैं दीदी अंदर से.
मन और थॉट्स में क्या फर्क है?
पता नहीं, वैसे तो सही लग रहा होता है लेकिन जब हम अकेले बैठे हैं तो थॉट्स जैसे गलत थॉट, नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके लिए.
मतलब कैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके लिए?
तो बुरा फील होता है उनके लिए, जैसे बुरा मत, कुछ बुरा होने वाला है क्या इनके साथ, इस टाइप का थॉट्स हो जाते हैं.
हाँ, तो ये तो देखो मन का काम है, कुछ खराब हो रहा है तो मन तो इमिजिएट जो है ना वर्स्ट केस सिनारियो सोचने ही लग जाता है. होता है कि नहीं? जैसे कभी कोई बच्चा ही बाहर गया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, लेट अस से फोन नहीं मिला, नेटवर्क इशू है, जो भी है, मन में आता है अरे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, अरे कहीं फंस तो नहीं गया होगा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा. होता है कि नहीं? ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहले एक नेगेटिव थॉट आती है कि अरे कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो. तो ऐसे ही जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे मन की आदत है कि वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेगा ही. तो बस अब तो आपको पता होना चाहिए कि मन ऐसा सोचता है. ऐसे ही हमारा मन, देखो यहाँ पे कुछ हल्का सा बीमारी कोई है तो मन में आ जाता है अरे कहीं कुछ और बहुत ख़राब तो नहीं हो रहा, और यही अगर कुछ हल्का सा अच्छा हो जाए तो मन तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाने में भी घबराता नहीं है, है ना. कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो बड़े अच्छा, अब ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, पूरा एक के बाद एक ऐड कर लेता है कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा.
हालांकि दीदी कोई परेशानी फील नहीं होती. हाँ. लेकिन ये चीज रहने का ये क्या है?
ये मन की आदतें हैं, मन ने यही सब देखा है, सोचा है, आदत है, तो पता होना चाहिए कि मन ऐसे ही करता है. अब आप लोग तो इतने समय से मेरे साथ जुड़े हो, साधना में हो, तो मन ये सब करता है. इससे मुझे वो ध्यान आई कहानी, आप सबको पता होगा कि एक बार क्या हुआ, एक गांव वाला था और उस दिन थोड़ी सी उसकी जो खेती करता था तो थोड़ी कमाई अच्छी हो गई, बड़े मतलब बहुत सालों से कमाई बहुत अच्छी नहीं हुई थी, थोड़ी सी अच्छी हो गई, थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए. तो बैठा अपनी पत्नी के पास आया, बड़ा खुश था. अब क्या है, कुछ अच्छा हो गया, जैसे आपका मन किसी को बीमार देख के दुखी हो गया ना, ऐसे थोड़े से पैसे ज़्यादा मिल गए थे तो बड़ा खुश हो गया. तो अपनी पत्नी को बोला कि अरे इस बार खेती बहुत अच्छी हुई है, पैसे अच्छे आए हैं, मेरे ख्याल से अगर 6 महीने ये पैसे होते रहे, ऐसे ही हमारी अगर पैसे मिलते रहे तो 6 महीने के बाद ना मैं भैंस खरीद लूँगा. तो पत्नी भी बड़ी खुश हो गई, उसने बोला अरे वाह भैंस लोगे? उसने बोला हाँ, देखो घर का दूध होगा, घर का दही होगा, घर का मलाई मक्खन घी सब कुछ हमारे घर के निकलेगा, कितना मज़ा आएगा ना. तो बहन ने, उसने बीवी ने बोला अरे वाह भैंस तो बहुत दूध देती है ना, और मक्खन भी बहुत होगा, तो मैं ना ऐसा करा करूँगी कि थोड़ा सा मक्खन ना मैं अपनी बहन को भी दे दिया करूँगी. तो वो आदमी चुप रहा. फिर उसने बोला कि मक्खन का घी भी निकलेगा तो मैं ना थोड़ा थोड़ा घी बचा के रख लिया करूँगी, और मेरा जो भाई रहता है दूसरे गाँव में, उस मक्खन तो नहीं पहुँचेगा, उसको मैं घी भी पहुँचा दिया करूँगी. तो अब जो हस्बैंड है उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाऊँगा, फिर मैं भैंस खरीद रहा हूँ, उसका ये दूध आएगा मैं निकालूँगा, फिर मक्खन आएगा, मक्खन ये अपनी बहन को देगी, घी ये अपने भाई को देगी, और वो उससे लड़ने लगा। और बीवी ने बोला क्या तुम ही मेहनत करते हो क्या, मैं नहीं करती हूँ क्या, मैं भी तो कितना काम करती हूँ। और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे इसी बात को लेके। उसने बोला कि तुम किसी अपनी बहन भाई को कुछ मक्खन या घी नहीं दोगी, और उसने बोला नहीं मैं तो दूंगी। अब दोनों लड़ रहे थे, इतने में उनका पड़ोसी आ गया आवाज़ सुन के, तो उसने आके बोला अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। तो उसने बताया, उसके जो हस्बैंड था आदमी था, उसने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी बात हुई है, और ये बोल रही है कि ये जो है जब भैंस का वो निकलेगा मक्खन और घी, ये अपनी बहन भाई को देगी। तो वो आदमी तभी बाहर गया जो पड़ोसी था, एक डंडा लेके आया और इस आदमी को पीटने लगा जोर जोर से। तो उसने बोला अरे तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, मैंने क्या किया। उसने बोला तुम्हारी भैंस जो है ना वो मेरे खेत में घुस गई है और मेरे खेत के सारा अनाज को खा रही है, मैं इसलिए तुम्हें पीट रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारा मन, कुछ अच्छा हो जाए तो भी 10 कहानियाँ बुन लेता है, कुछ बुरा हो जाए तो भी 10 कहानियाँ बुन लेता है। तो हमें उस मन के साथ एक नहीं होना है, बस देखना है कि हाँ मन ये सब करता है, ऐसा ही है, यही इसका स्वरूप है, यही इसने सीखा है, यही इसका स्वभाव है, करने दो। इनफैक्ट मेरी अभी इसी हफ्ते एक और साधिका से बात हो रही थी, और काफ़ी दिनों बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। अभी जो मैंने शेयर किया था ना वो 12 मिस्टेक्स इन क्रिया योग, तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोग दीक्षा ले लेते हैं और फिर टच में नहीं होते और मिलते जुल मतलब बताते नहीं हो क्या चल रहा है, तो उन्होंने वो सुना होगा। तो काफ़ी समय के बाद उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, बात की, तो मैंने उनको बोला, और उन्होंने जो सवाल पूछे वो यही सब सवाल हैं। आज भी हमने देखिए ना कितने अच्छे सवाल थे, आज हमने चर्चा की, कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो आई होप सबको हुई होगी। तो मैंने उनको यही बोला कि आप अगर मिलोगे, सेशन में आओगे, अपने सवाल पूछोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं सवाल पूछने से इसलिए डरती हूँ, मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, या आप अगर मैं सबके सामने अपना सवाल पूछूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे हाय ये ऐसे सोचती है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे इस डर के कारण उससे मुझे बहुत और स्ट्रेस हो जाएगा, इसलिए मैं कोई सवाल ही नहीं पूछती हूँ। तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन तो ये है कि, और इतना सब कुछ, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे बात की तो समझ में आया कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में पता नहीं कहाँ अटकी हुई हैं, मतलब बिल्कुल ही ज़रूरत ही नहीं है जिन चीज़ों में अटकने की, पर वहीं अटके हुए हैं। मैंने कहा या तो वही है कि तुम अपना अटके रहो इन चीज़ों में और दुख बनाते रहो और सोचते रहो कि हाय मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है, मेरे तो पता नहीं कितने बुरे कर्म किए थे, मेरी लाइफ में क्या हुआ पड़ा है, या तो तुम वो चूज़ कर लो, या फिर तुम थोड़ा सा रिस्क लो, आओ और अपना सवाल पूछो। मैंने कहा पहली बात तो यहाँ पर कोई जज नहीं करता, सबको पता है, सबकी यही कहानी है, यहाँ पे तो सब जानते हैं कम से कम इस सत्संग में कि कोई पर्सनल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये हर इंसान के मन की कहानी है जो भी सवाल पूछे जाते हैं। पर फिर भी चलो अगर किसी ने मजाक उड़ा भी दिया तुम्हारा, किसी ने बोल भी दिया कि अरे देखो ये देखो ये कैसे सोच रही है, कैसा सवाल पूछ रही है, तो क्या हो गया, वो बेटर है या तुम अपने दुख में रहो वो बेटर है। उस दुख में रहने से तो बेटर है ना कि अपने सवाल पूछ के आप क्लैरिटी ले आओ। मैंने कहा कि और लोग बात भी करेंगे तो कितना करेंगे, 2 दिन 4 दिन किसी को किसी की नहीं पड़ी, तुम्हारी अगर कोई बात भी करेगा, तुम्हारा कोई मजाक भी उड़ाएगा तो 1 दिन उड़ा लेगा, 2 दिन उड़ा लेगा, उसके बाद भूल जाएंगे तुमको, किसी को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, कम से कम तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। तो ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि मुझे पता है ये मन का एक रहता है, मन में थोड़ा संकोच होता है कि हम कैसे अपना सवाल पूछें, दूसरे लोग क्या समझेंगे, या कहीं हमें गलत तो नहीं समझ लिया जाएगा, या हमारा कोई मजाक तो नहीं उड़ा देगा। अब साधक होके भी हम अगर इस बात से डरते रहेंगे कि हमारा मजाक तो नहीं उड़ जाएगा तो बहुत मुश्किल है। उड़ भी जाए तो उड़ जाने दो मजाक, उतना भी स्ट्रांग बनो कि कोई बात नहीं, अगर मजाक भी उड़ रहा है, अगर बेइज्जती भी हो रही है तो क्या हो गया, फिर साधक ही किस बात के हुए अगर हम अभी भी इन चीज़ों से डरते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से तो बाहर आना है, यही सब चीज़ों से निकलना है।
सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अभी जब ये जजमेंट वाली बात पे सोच के, तो दिस इज माय थिंकिंग लाइक कि आई फील जजमेंट तो होता ही होता है, माइंड करता ही करता है, इवन लाइक इतने उस पे भी, मतलब आई फील कि नहीं इमिजिएटली माइंड जजेस, बट द डिफरेंस आई फील इज कि इमिजिएटली वो अवेयरनेस आ जाती है जज कर रहा है, एंड देन यू डोंट नॉट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे लाइक एज पर द जजमेंट।
बिल्कुल।
सो इज दैट फाइन? लाइक जनरली मतलब जो मैंने देखा कि वो स्टॉप नहीं होती जजमेंट, इमिजिएटली माइंड तो करता ही करता।
हाँ, तो आप जो बोल रहे हो ठीक है, बहुत ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों में माइंड जज करता ही है, पर ऐसा भी होता है बहुत सारी चीज़ों में, एंड आई एम श्योर इट वुड हैव हैपेंड विद यू एज वेल, कि कुछ चीज़ों में माइंड मतलब जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे जज करना भी बंद कर देता है।
हाँ जी,
दोनों चीज़ें होती हैं, तो जज करना भी
में तो नहीं करता, बट लाइक मोस्टली लाइक इफ यू आर मीटिंग एनीबॉडी या कुछ भी लाइक इंटरैक्टिंग विद एनीबॉडी,
हाँ,
इवन आप पहली बार भी किसी से मिल रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक वो क्रिएट कर लेगा।
बिल्कुल।
बट द डिफरेंस इज कि द रिस्पॉन्स जो पहले एकदम जैसा जज किया इमीडिएट द रिएक्शन वॉज अकॉर्डिंग टू द जजमेंट, बट वो चीज नहीं होती।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली वो चीज़ नहीं होती, और आप उसको कैरी भी नहीं करते। अगर सपोज आपके माइंड ने जज भी किया, इट इज़ जस्ट मोमेंट्री, फिर आप खुद भी भूल जा, आपका माइंड भी भूल जाता है कि मैंने उसको किस चीज़ पे जज किया था। इट इज़ जस्ट मोमेंट्री, यस यस,
बट जजमेंट इज देयर।
हाँ, जजमेंट होता है काफ़ी, जैसे मैंने बताया ना, सी बिकॉज इट इज़ द नीड, ये नेचर का दिया हुआ, एक देखा जाए तो ये हमारी एक सिद्धि है कि हम जज कर पाते हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इसकी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज सो मेनी टाइम्स वी रियली नीड टू जज, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल। अगर हम जज नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे जज नहीं करना है ना, उस माइंड को ये नहीं पता, वो हर चीज़ में ही जजमेंट करने बैठ जाता है।
या एंड ऑल्सो लाइक वेन यू इंटरैक्ट विद पीपल, बिकॉज लाइक दुनिया तो इसी पे चल रही है, जजमेंट के बेस पे ही चल रही है, लाइक द मेन थिंग माइंड लव्स गॉसिपिंग,
करेक्ट,
एंड गॉसिपिंग इज बेस्ड ऑन जजमेंट।
हां,
सो लाइक जब भी तुम ऑब्वियसली किसी से भी मिल रहे हो तो इट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली, बट देयर आल्सो द ओनली डिफरेंस आई फील इज कि हां यू डू गेट इन्वॉल्व्ड इन इट, बट एट द सेम टाइम तुम उस चीज में उनको भी करेक्ट कर पाते हो या समझा पाते हो, नहीं ये चीज ऐसे नहीं, मे बी उनकी पर्सपेक्टिव ये हो, यू नो,
करेक्ट,
एट द सेम टाइम यू आर अवेयर कि नहीं वो जजमेंट जो है वो पूरा करेक्ट नहीं है।
हाँ, और ये तो हमें पता ही होता है कि हमारा जब भी माइंड जज कर रहा है वो सिर्फ हमारे स्केल पे जज कर रहा है, वो बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग कर रहा है जो बहुत ही लिमिटेड है, सो इवन दैट जजमेंट, मेरे माइंड का जजमेंट भी जरूरी नहीं है कि करेक्ट ही हो, वी अंडरस्टैंड दैट नाउ।
मोनिका जी, आई रिमेम्बर फ्यू इयर्स बैक, काफी मतलब 5-6 साल हो गए, रिगार्डिंग दिस टॉपिक ओनली, एट दैट टाइम यू मेड अस डू वन स्मॉल एक्सरसाइज, यू नो कि जब व्हेनेवर यू फील लाइक जजिंग समवन, टेक अ पॉज, ओके, एंड आफ्टर द पॉज क्वेश्चन योरसेल्फ, हाउ मच डू आई नो अबाउट दिस सिचुएशन एंड द पर्सन, ऑटोमेटिक वो जजमेंट कैंसिल हो जाता है।
बिल्कुल,
काफी मतलब 6 साल हो गए, आई रिमेम्बर, बिकॉज आई हैड आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन एंड यू हैड given me this reply, and this exercise really helped me.
I'm so glad, Swati, and I love it because you are the one who practices all the exercises, you also remember them, so great, so very good for sharing, you know, thank
and
you.
And it really helps, like even in Shivani's question, if you do that exercise,
correct,
फिर judgmental automatically जो 100% level पे है ना, वो single figure में आ जाता है.
हाँ,
yes, that helps because वो एक pause automatically आने लग गया है.
Correct.
हाँ. पॉज लेके पूछो कि आपको उस सिचुएशन और उस आदमी के बारे में कितना मालूम है.
बिल्कुल, बिल्कुल. तो जो भी वॉट एवर दैट वर्क्स, एंड एज शिवानी सेड कि हाँ जजमेंट हो जाता है क्योंकि माइंड बहुत क्विक है जजमेंट कर, यू नो जजमेंट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हमारा हम बोलते हैं ना नी जर्क रिफ्लेक्स जो होता है, कि बिल्कुल वैसे ही हमारे माइंड का एक जजमेंट करने का मोड है. पर बहुत फ़र्क है वो जजमेंट में और जो हम एक रेगुलर बेसिस पे जजमेंट करते हैं, बहुत फ़र्क होता है. उसमें तो हम अपने जजमेंट से चिपक ही जाते हैं, उसको सच ही मान लेते हैं और दूसरे पर्सन को हमारे जजमेंट के हिसाब से ही देखते हैं, वैसा करते हैं. पर मैं आपको एक और भी चीज़ बताती हूँ जो मैं पहले भी शेयर कर रही थी, कि ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा हुआ है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि अगर आप किसी के बारे में कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल हो जाओ, और अगर आप ऐसे भी कुछ लोगों के साथ हो जो बड़े जजमेंटल हैं, लेकिन आप अगर इतने स्ट्रॉन्ग हो और आप अगर नॉन जजमेंटल रह सकते हो, आप देखोगे उनमें भी वो डिफरेंस आएगा. और मुझे लोगों ने ये फीडबैक भी दिया है, और कुछ नहीं, मेरे ऑफिस के ही लोग, मैं अपने ऑफिस के लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो जैसा कि दीक्षा ने भी बोला, ऐसा होता है कि पीपल आर, और ऑफिसेज में भी कॉरपोरेट में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है, खींचातानी भी बहुत होती है. मतलब लोग चाहते हैं ये प्रूव करना कि आप ख़राब हो, आप बेकार हो, ताकि उनको फ़ायदा मिल जाए या वो आगे बढ़ जाए बॉस की नज़रों में या क्लाइंट की नज़रों में या वॉट एवर इट इज़. ओके, वो एक अपने आप में ही जंगल है जो कॉरपोरेट लाइफ होती है. लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको क्लियर है और आपको ये पता है कि हाँ सामने वाला जज करेगा, उसको ये है और मुझे नहीं चाहिए. सी, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, वॉट मेक्स यू वेरी पावरफुल, वेन यू डिसाइड कि मुझे कुछ यहाँ पर तुमसे चाहिए ही नहीं, आई हैव नॉट कम हेयर टू आस्क एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर कि तुम मुझे यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जितना काम है मैं यहाँ पर यही काम करने आई हूँ. तो अगर आप उस मोड में आ जाते हो तो आप नेचुरली आप नॉन जजमेंटल हो जाते हो वहाँ पे. और जब आप नॉन जजमेंटल हो जाते हो, उसका इफेक्ट दूसरों पे बहुत पॉजिटिव पड़ता है. तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो लोग जज कर रहे हैं आपको, वो भी एटलीस्ट टेम्प्रेरली उसमें वो देख पाते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई है जो नॉन जजमेंटल है. और ये फीडबैक मुझे बहुत बार मिला हुआ है, और मैं सिर्फ ऑफिस वाले लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, और तो किसी की बात कर ही नहीं रही, कि मुझे नहीं जज करना है उनको, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, मुझे पता है वो कैसे हैं एंड आई एम ओके विद दैट, क्योंकि वो ऐसे ही है, मुझे पता है ना कि कॉरपोरेट में लोग कैसे होते हैं. सो इट इज़ ओके, वॉट इज़ रॉन्ग विद दैट, लेट देम बी, इट डजेंट मैटर. तो ये सब अलग अलग स्तर हैं जजमेंट के.
Manali, I'll share something about being judgmental.
Yes, Shalini.
One thing which has helped me and I've been practicing it is, jab bhi kisi ke baare mein ya situation ke baare mein, obviously kuch aisa hota hai that you get judgmental or you mind starts framing a judgment about it. So I try and see that situation or person in the three modes of gunas as mentioned in the Bhagavad Gita. कि वेदर दैट पर्सन इज ऑपरेटिंग इन सत्व, रज और तमस गुण. सो वॉट हैपन्स इज कि उसको फर्दर एनालिसिस में इट हेल्प मी स्टॉप इट देयर ओनली, बिकॉज ऑपरेट किस फॉर्म में करेंगे, इन एनी ऑफ दीज थ्री मोड्स ओनली, द होल मटीरियल वर्ल्ड गोइंग टू ऑपरेट इन दीज थ्री मोड्स ओनली. सो ही इज ऑपरेटिंग इन दैट मोड, सो दैट हेल्प्स मी इन रिजॉल्विंग इट रादर बीइंग फर्दर जजमेंटल.
राइट, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग. वही है, हम सब ने अपने तरीके बनाए हैं कि कैसे हम उस चीज से बाहर आ सके, क्योंकि आई थिंक हमने, क्योंकि जजमेंट पे इतनी बात की, एक चीज़ हम लोग सब रियलाइज़ करते हैं कि हम जब भी किसी को जज करते हैं, हमें क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं, कि हमें खुद को ही परेशानी हो रही है ना. इट इज़ नॉट कि किसी दूसरे को परेशानी हो रही है हमारे जजमेंट करने से. जब हम दूसरों को जज करते हैं तो हम खुद ही परेशान हो रहे हैं, और इसीलिए हम नॉन जजमेंटल होना चाह रहे हैं, इज़न्ट इट. यही चीज़ हम रियलाइज़ कर रहे हैं. तो जो भी चीज़ हमारे लिए काम करे यहाँ पर, वही ठीक है. हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप दूसरे को उसमें देख सकते हो और खुद को भी देख सकते हो कि मैं जो जज कर रहा हूँ, मैं किस गुण में ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं सत्व से कर रहा हूँ, तमस से कर रहा हूँ कि रजस से कर रहा हूँ, है ना. अपने लिए भी देख सकते हो जो चीज़ भी काम करे.